नानी माँ ने रिस्पेक्ट के साथ अधीराज जी की ओर देखते हुए कहा था, अधीराज जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? नानी माँ की आवाज़ सुनकर अधीराज जी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच शारदा जी। वहीं आस्था अपने दादाजी का हाथ पकड़कर उनके पास बैठ गई और भावुक होकर बोली, दादाजी आप ठीक तो है ना? हम तो बहुत डर गए थे, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप अचानक इस तरह बीमार हो जाएंगे। तभी अधीराज जी ने वहां मौजूद सभी लोगों को बारी बारी से देखा और बोले, माफ़ कीजिएगा, हमारी वजह से आप लोगों को बेकार में तकलीफ हुई। अभी तो नई नई शादी हुई थी, घर में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन हमारी अचानक तबीयत खराब ने सब कुछ खराब कर दिया। अधीराज जी बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहे थे और उनकी आवाज़ में साफ पछतावा झलक रहा था। तभी आलोक जी आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? आखिर आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आपकी तबीयत की वजह से हमारी खुशियों में कोई ग्रहण लग गया है? इस वक्त तो हमें सिर्फ आपकी फ़िक्र थी, और अब जब आप पहले से बेहतर हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है? फिर उन्होंने वहाँ मौजूद सभी लोगों की ओर देखकर कहा, अब आप लोग भी जाइए और जाकर चाय नाश्ता कीजिए, भाई साहब को इस वक्त आराम की सख्त ज़रूरत है, थोड़ी देर के लिए इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। दादाजी की बात सुनकर सबने अधीराज जी से मिलकर उनका हालचाल पूछा और फिर कमरे से सभी लोग एक एक करके बाहर जाने लगे। हालांकि आस्था अभी भी वहीं बैठी रही थी। तब दादाजी ने प्यार से उसकी ओर देखकर कहा, गोरी बेटा, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ, तुम भी जाकर कुछ खा पी लो। आस्था उदास होकर बोली, नहीं दादाजी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अधीराज जी मुस्कुराकर बोले, गोरी बिटिया, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी गोरी अपने दादा को लेकर बिल्कुल भी परेशान हो। बेटा जाओ, थोड़ा बहुत कुछ खा पी लो, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। दादाजी की बात सुनकर आस्था ने ना चाहते हुए भी अपना सिर हिलाया और फिर भारी मन से बाहर आ गई। फिलहाल दादाजी ने अभिमान जी की ओर देखा और प्यार से कहा था कि वो रायचंद विला में शिफ्ट हो जाएं, और वैसे भी रायचंद विला का नाम अब बदलकर सिंघानिया मेंशन 2 रख दिया गया था और वीर ने भी अपना सरनेम सिंघानिया कर लिया था। हालांकि अभिमान जी का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन दादाजी ने उनसे कुछ समय वीर और वसुंधरा के साथ अकेले बिताने के लिए कहा था, क्योंकि दादाजी नहीं चाहते थे कि वीर के मन में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी रह जाए कि अभिमान आज भी अरमान को उससे ज्यादा प्यार करते हैं। वीर और वसुंधरा इतने दिनों बाद अपने परिवार के पास लौटे थे, इसीलिए कम से कम कुछ समय तो उन्हें अपने परिवार के साथ बिताना ही चाहिए था। हालांकि दादाजी ने यह भी साफ कह दिया था कि हफ्ते बाद हर वीकेंड पर उन्हें वापस यहाँ आना होगा। अभिमान जी ने मुस्कुराकर कहा था, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ तभी तक रहूँगा जब तक मेरा दिल करेगा। अभिमान जी की बात सुनकर दादाजी बोले, बेटा हम सब यहाँ हैं, तुम बेफिक्र होकर जाओ। दरअसल दादाजी अच्छी तरह जानते थे कि अभिमान की अपनी ज़िंदगी से कितनी अपेक्षाएं हैं। कुछ समय पहले ही दादाजी उन्हें अच्छी तरह समझ चुके थे। उन्होंने एक बार अभिमान को समझाने की कोशिश भी की थी कि अगर वो चाहें तो वसुंधरा को पूरी तरह अपना सकते हैं, लेकिन अभिमान जी के दिल में अभी भी एक झिझक थी। इस बार भले ही पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो सारी दौलत अरमान की थी, अभिमान की नहीं, और यही बात कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रही थी। अभिमान जी ने अपने पिता आलोक से साफ शब्दों में कहा था, मैं खुद कामयाब होना चाहता हूँ पिताजी, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई बड़ा फैसला लूँगा। तब दादाजी ने उन्हें सलाह दी थी, अगर तुम्हें अपनी अलग पहचान बनानी है तो रायचंद इंडस्ट्री से शुरुआत करो। वैसे भी रायचंद इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उसे अपने सिरे से शुरू करो और सिंघानिया अंपायर का नाम दो, और वीर को अपने साथ शामिल करो। वैसे भी वीर वहाँ अकेला है, उसे अपने अनुभव से गाइड करो और अपनी एक अलग पहचान बनाओ। कहीं ना कहीं दादाजी उन्हें सिर्फ परिवार के पास नहीं भेज रहे थे, बल्कि उन्हें अपनी पहचान बनाने का एक मौका भी दे रहे थे, और अभिमान इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। तभी वीर ने अपने पिता का हाथ थामकर कहा था, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अब मैं इसे एक नए नाम और नई पहचान के साथ खड़ा करना चाहता हूँ, और इसमें मुझे सिर्फ आपकी मदद की ज़रूरत है। इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनकर आप मुझे जो भी बताएंगे मैं वही करूँगा। ये सुनकर कहीं ना कहीं अभिमान जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उन्हें अपने बेटे के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा और अपनी अलग पहचान बनाने का जुनून साफ नजर आ गया था, इसीलिए उन्होंने जाने का इरादा कर लिया था। जाने से पहले वो आखिर में अरमान के सामने जाकर खड़े हो गए थे। अरमान ने भी उन्हें जाने से नहीं रोका, क्योंकि दादाजी और आस्था दोनों ने मिलकर अरमान को पहले ही सारी बातों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। फिलहाल अरमान हल्की मुस्कान और धीमी आवाज़ में बोला, ऑल द बेस्ट पापा। अरमान के मुंह से पापा शब्द अभिमान जी को काफ़ी भावुक कर गए थे और उन्होंने उसे गले से लगाया। तब अरमान ने उन्हें कहा, जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझे सिर्फ एक फ़ोन कर दीजिएगा। ये सुनकर अभिमान जी के चेहरे पर मुस्कान भरी वाहत सी आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर अरमान के माथे को प्यार से चूम लिया और फिर आस्था के सर पर प्यार से हाथ रखा। आस्था सब जानती थी और वो खुद किसी की पहचान के बीच में नहीं आना चाहती थी।
इसीलिए आस्था ने झुककर अभिमान जी से आशीर्वाद लिया और इसी तरह से बारी बारी से सभी लड़कों और लड़कियों ने आकर अभिमान जी से आशीर्वाद लिया, साथ ही साथ वसुंधरा से भी अच्छी तरह से मिले। वहीं आहान ने वीर को गले से लगाकर कहा, ऑल द बेस्ट ब्रो, मुझे उम्मीद है तुम बहुत कामयाब होंगे। वीर ने हल्की मुस्कुराहट से हामे सिर हिलाया और बारी बारी से सबसे मिला। फिर अभिमान जी ने आखिर बार पूरे परिवार की ओर देखा। उसके बाद वो वसुंधरा और वीर को साथ लेकर वहां से रवाना हो गए। उन लोगों के जाने के बाद दादाजी ने आस्था की ओर देखा। आस्था की आंखें इस वक्त नम थीं। तब दादाजी उनके पास आए और बोले थे, बेटा उनका जाना जरूरी था और वैसे भी वो मेरा बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए मैं उसे इस तरह से अपने पास नहीं रख सकता। अभी उसकी जिंदगी एक बार फिर से शुरू हुई है, उसे जिंदगी को एक बार और सोचने समझने का मौका दो और फिर वो ज्यादा दूर नहीं गया है। जब भी हमारा मन होगा हम उससे मिलने के लिए चले जाएंगे या फिर वो यहाँ आ जाएगा। सबको एक साथ वहां देखकर नानी माँ बोली थी, लेकिन आस्था बेकी तुम अपने दादाजी के पास से बाहर क्यों आ गई? बेटा इस समय तुम्हारी जरूरत है उन्हें, तुम्हें उनके पास ही होनी चाहिए। आस्था के दादाजी का नाम सुनकर अरमान का चेहरा एक बार फिर डार्क पड़ गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा परिवार दादाजी से मिलकर आया था लेकिन उनमें अरमान शामिल नहीं था। अब ये सुनकर नानी माँ की बात पर आस्था बोली थी, वो दादाजी ने मुझे बाहर आने के लिए कहा था और अविनाश भैया हैं उनके साथ। ठीक उसी वक्त रश्मि वहां आई और नानी माँ की गोद में अपने बेटे को देते हुए बोली, अरे नानी माँ अभी तक तो हम अपने बाबू को बाबू बाबू कहकर ही पुकार रहे हैं, अभी तक हमारे बेटे का नाम तक नहीं रखा गया। बताइए ना नानी माँ उसका नाम क्या रखा जाएगा? राजवीर और सम्राट के चक्कर में सही से बच्चे के आने की खुशियां तक नहीं मना पाए थे, लेकिन फिलहाल नानी माँ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा था,
अरे रश्मि बेटा हमने पहले ही सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चे का नामकरण करवा लिया है। नानी माँ ने पंडित जी से बात करके पंडित जी को बच्चे की जन्मतिथि समय और नक्षत्र देखकर नाम का पहला अक्षर हमें बता दिया था। अब घर में दो खतरनाक दुश्मन थे इसलिए हमने उन्हें घर पर नहीं बुलाया और मंदिर में ही पूजा अर्चना कराकर नाम का पहला अक्षर ले लिया। रश्मि ने एक्साइटेड होकर पूछा, सच में और क्या नाम रखा गया है? नानी माँ मुस्कुराई और बोली, कान्हा, कान्हा मल्होत्रा। ये सुनकर आस्था की आंखों में नमी आ गई थी। अगले ही पल उसने नानी माँ को गले से लगा लिया और भावुक होकर बोली, नानी माँ आप सचमुच महान हैं, इतनी सारी उलझनों के बाद भी आपने इस बात का ध्यान रखा और बाबू का नामकरण भी करवा लिया। रश्मि और आकाश ने आगे आकर नानी माँ को गले से लगा लिया। फिलहाल तभी अबीर सिंह राठौड़ और प्रियंका भी वहाँ आ गए थे। उन्होंने आकर सबसे आशीर्वाद लिया, अरमान से भी हेलो किया। फिलहाल अबीर ने दादाजी की ओर देखकर कहा, अब मुझे जाना होगा, मेरे पिताजी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आप सबसे मिलने आता रहूँगा और जब भी आप लोगों को मेरी ज़रूरत हो बस आप एक बार हुक्म करके देखना, अबीर सिंह राठौड़ आपको यही मिलेगा। वहीं आस्था का इरादा कुछ दिन और प्रियंका को वहीं रोकने का था, लेकिन प्रियंका अब काफ़ी ठीक दिखाई दे रही थी। वो किसी भी तरह के ट्रॉमा में नहीं थी। फिलहाल सिचुएशन को समझते हुए दादाजी ने कहा कि वो इस तरह से किसी की निजी जिंदगी के बीच में नहीं आ सकते। अगर उन्हें अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी है तो उन्हें करने देनी चाहिए। ये बोलकर दादाजी ने उन्हें वहां से जाने की इजाज़त दे दी थी। अबीर हल्की मुस्कान के साथ दादाजी के गले लगा। आखिर में वो नानी माँ से मिला और बोला था, नानी माँ सच में आप बहुत ही ज़्यादा महान हैं, आपकी बहुत याद आएगी मुझे, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। तब नानी माँ ने जल्दी से अबीर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटवा जब भी तुम्हें इस बूढ़ी नानी की याद आए तब दौड़े चले आना, हम तुम्हें यहीं दिखाई देंगे। और फिर थोड़ा मजाक करते हुए बोली, वैसे भी हमें तो लगने लगा है कि आस्था बेटी अब हमें यहाँ से कहीं नहीं जाने देगी। नानी माँ की बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए थे और आहान तो दौड़कर नानी माँ के गले लग गया और बोला, आपके बिना तो हम एक भी दिन रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते, आप जानती हैं ना इस बात को। ये सुनकर नानी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो भावुक होकर बोली थी, बेटा सच बताएं तो आप लोगों के बिना भी इस बूढ़ी नानी का दिल नहीं लगेगा, आदत हो गई है हमें आप लोगों की, आपकी बातों की, आपके प्यार की। सचमुच बेटा आप लोगों ने एक बूढ़ी नानी को इतना प्यार और मान सम्मान दिया है कि हमारा तो ये जीवन धन्य हो गया। फिर उन्होंने प्यार से सबकी ओर देखते हुए कहा, हम आप लोगों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, आप लोग अब हमारे अपने हो। ये सुनकर सभी भावुक हो गए थे, लेकिन तभी अरमान का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों के सामने वो दृश्य घूम गया जब पिछली रात उसने आस्था के दादाजी के ऑक्सीजन मास्क को हटाने की कोशिश की थी और अचानक उसे ऐसा लगने लगा कि आस्था के दादाजी उसे सब कुछ सच बता देंगे और उसके बाद आस्था उसे छोड़कर चली जाएगी। ये सोचते ही अरमान का दिल कांप उठा और उसकी आंखें बेहद लाल हो गई थीं।